أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. प्यारे दोस्तों और हमारे इस कार्यक्रम के सभी दर्शकों, आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। हमने अपने इस कार्यक्रम को जब आरंभ किया था तो हमारा प्रयत्न ये था कि हमारे व्यवहारिक जीवन में जिन मसलों को हमें आवश्यकता होती है उसके बारे में आपके सामने बयान किया जाए और उससे संबंधित मसाइल को ज़िक्र किया जाए। इसी सिलसिले को हमने तहारत या पवित्रता के बाब से शुरू किया था, उसके बाद हमने नमाज के अध्याय को समाप्त किया। आज से हम जिस नए अध्याय को आपके सामने खोलेंगे उस अध्याय का नाम होगा रोज़ा। हम आज के कार्यक्रम से रोज़े से संबंधित मसाइल के बारे में बातचीत आपके सामने पेश करेंगे। जैसा कि इस सृष्टि का ईश्वर हमारा अल्लाह अपनी पवित्र पुस्तक कुरान में फरमा रहा है कि ऐ ईमान लाने वालों, तुम्हारे ऊपर रोज़े वाजिब किए गए हैं, उसी प्रकार जैसे तुमसे पहले वाली कौमों और उम्मतों पर वाजिब किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि शायद तुम तक्वे वाले हो जाओ, तक्वा अख्तियार करो। रोज़ा इस कुरान की आयत के अनुसार हर मुसलमान के ऊपर वाजिब है। हर वो मुसलमान जो बालिग और आक़िल है उसके ऊपर रोज़ा वाजिब होता है। अगर इस्लामी विचारधारा में हम रोज़े की व्याख्या करना चाहें तो इस प्रकार होगी कि रोज़े का अर्थ ये है कि ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए एक मुसलमान सुबह की अज़ान से लेकर मगरिब की अज़ान तक कुछ बताए हुए कार्यों को अंजाम ना दे। अगर एक मुसलमान उन विशेष कार्यों को अंजाम नहीं देता है तो उसका वो रोज़ा कहा जाएगा। ये एक व्याख्या है जो पूर्व व्याख्या है, लेकिन जब हम इस्लाम को अध्ययन करते हैं, उसको गहराई से देखते हैं, तो समझ में आता है हमको कि रोज़े का अर्थ केवल भूखा रहना, प्यासा रहना नहीं है, बल्कि रोज़े का अर्थ और उसकी अंतर आत्मा ये है कि इंसान ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने आप को पापों, गुनाहों और हर उस चीज़ से दूर रखे जो इंसान को ईश्वर से दूर करती हैं। अगर इंसान इन कार्यों को अंजाम देता है तो जहाँ एक तरफ वो ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए रोज़ा रख रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो ईश्वर के करीब भी हो रहा है। ये रोज़े की संक्षिप्त व्याख्या थी जो हमने आपके सामने अभी बयान की। अब अगर हम रोज़े को पूर्ण रूप से देखना चाहें, रोज़ों को अलग अलग भागों में बांटना चाहें, तो रोज़े चार प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले रोज़े वो रोज़े हैं जो वाजिब होते हैं, जिनको ईश्वर ने कहा है ये तुम्हारे ऊपर रखना वाजिब है, अगर रखोगे तो सवाब मिलेगा, अगर नहीं रखा तो अज़ाब के हकदार होगे। दूसरे रोज़े वो हो सकते हैं जो हराम हो सकते हैं। शायद कोई हमारा भाई ये प्रश्न करे, क्या ये भी हो सकता है कि रोज़े भी हराम हो? रोज़ा तो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए रखा जाता है, तो ये कैसे हो सकता है कि रोज़ा हराम हो? हाँ, कुछ रोज़े ऐसे भी हैं जो हराम हो सकते हैं, जिनको हम अपने आगे के कार्यक्रम में इंशाल्लाह बयान करेंगे। कुछ रोज़े वो होते हैं जो मुस्तहब हैं, अगर जिनको रखा जाता है तो ईश्वर की तरफ से सवाब मिलेगा और सवाब में बढ़ोतरी होगी। उसके बाद कुछ रोज़े ऐसे हैं जो मकरूह होते हैं, जिनके बारे में ईश्वर नहीं चाहता कि आप उन दिनों में रोज़ा रखें, लेकिन अगर रखा जा रहा है तो अजाब नहीं हो सकता है, अजाब नहीं मिलेगा। अब अगर हम इनको जो हमने चार भागों में बांटा है उनको अगर एक एक करके बयान करना चाहें, तो सबसे पहले जिस चीज़ का नंबर आता है वो ये है कि वो कौन से ऐसे दिन हैं, वो कौन से ऐसे रोज़े हैं जिनको रखना वाजिब है, वो कौन से ऐसे दिन हैं जिनमें इंसान को रोज़ादार होना आवश्यक है। सबसे पहले जिन दिनों में रोज़ा रखना वाजिब है, हम और आप और हर मुसलमान इस बात को जानता है कि वो है माह रमज़ान के रोज़े। ये वो पवित्र महीना है जिसमें ईश्वर ने हर मुसलमान के ऊपर रोज़े को रखना वाजिब करार दिया है, और हर मुसलमान से उसकी मांग ये है कि इन दिनों में रोज़ा रखे। और दूसरे रोज़े कौन से हैं जो वाजिब हैं? अब अगर चूंकि हमने बताया अभी आपके सामने कि रमज़ान के रोज़े हर मुसलमान पर वाजिब हैं, अब अगर किसी कारणवश इंसान रमज़ान के रोज़े नहीं रखता है, छोड़ देता है या भूल जाता है या कोई और कारण होता है जिसके कारण नहीं रख पाता है, तो उसके बाद उन रोज़ों की जो क़ज़ा होगी ये भी वाजिब है। तीसरे रोज़े जो वाजिब हैं वो कफ़ारे के रोज़े हैं, कि जैसा कि अगर रमज़ान में कोई विशेष कार्य अंजाम दिया है तो उसके अनुसार जो विशेष कफ़ारे होते हैं जिनमें बाज़ में रोज़ा रखा जाता है, वो कफ़ारों के रोज़े भी इंसान के ऊपर वाजिब होते हैं। इसके बारे में विस्तृत रूप से हम आगे बातचीत आपके सामने पेश करेंगे। उसके बाद जो रोज़े वाजिब हैं, रोज़े इस्तेजारी। अब इस्तेजारी किस चीज़ को कहा जाता है? इस्तेजारी का अर्थ ये होता है कि इंसान किसी दूसरे के रोज़ों को या किसी दूसरे की इबादत को पैसा लेकर अंजाम दे। जैसे कोई मर गया है उसके रोज़ों को कोई दूसरा अंजाम दे पैसा लेकर, यानी अगर ऐसा कर रहा है तो इसको इस्तेजारी इबादत या इस्तेजारी रोज़ा कहा जाएगा। और जो रोज़े वाजिब हैं उसके बाद वो ये हैं कि अगर कोई इंसान एतिकाफ़ कर रहा है तो एतिकाफ़ 3 दिन का होता है, यानी कम से कम एक व्यक्ति 3 दिन मस्जिद में रुके और रोज़ा रखे, उसके साथ इबादतों को अंजाम दे, इसको एतिकाफ़ कहा जाता है। अब अगर कोई व्यक्ति मस्जिद में जाने के बाद एतिकाफ़ की नीयत से बैठता है और 2 दिन अपने एतिकाफ़ के पूरे कर लेता है, तो 2 दिन के बाद जो तीसरा दिन होगा उसमें उसका रोज़ा रखना वाजिब होगा। उसके बाद हज में कुर्बानी के बदले जो रोज़ा रखा जाता है वो रोज़े वाजिब हैं, यानी अगर कोई इंसान कुर्बानी हज में नहीं करता है जो वाजिब थी उसके ऊपर, अगर नहीं करता है तो उसके ऊपर कुछ विशेष रोज़े वाजिब होते हैं जो उसके लिए रखना वाजिब है। उसके बाद कौन से रोज़े वाजिब हो सकते हैं? अगर कोई इंसान कोई नज़र करे, कोई अहद करे, कोई कसम खाए, तो ये वो चीज़ें हैं जो इंसान के ऊपर रोज़े को वाजिब कर देती हैं। अगर ऐसा करता है तो उसके ऊपर उन रोज़ों का रखना उसके ऊपर वाजिब होगा। उसके बाद एक अंतिम चीज़ जो रोज़े वो जो रोज़े जो इंसान के ऊपर वाजिब होते हैं वो ये है कि अगर कोई बाप इस दुनिया से चला जाता है और उसके ऊपर कुछ रोज़े थे जो छूट गए हैं, तो इसके ये रोज़े उसके सबसे बड़े बेटे के ऊपर वाजिब होते हैं। यहाँ पर हमारे फुकहा के बीच में थोड़ा सा विचारधारा में अंतर नज़र आता है, वो थोड़ा थोड़ा मतभेद पाया जाता है फतवों में, कि बास फुकहा ये कहते हैं कि अगर उस बाप ने जानबूझ के रोज़ों को छोड़ा था, ईश्वर की नाफरमानी करते हुए रोज़ों छोड़ा था, तो वो रोज़े अपने उसके बड़े बेटे के ऊपर वाजिब नहीं हैं। हाँ, वो रोज़े जो बीमारी या किसी कारणवश छूट गए थे सिर्फ वो वाजिब हैं। इसलिए मेरा अपने दर्शकों से अनुरोध ये है कि इस मसले के संबंध में अपने उस फ़कीह का मसला ज़रूर देखें जिसकी आप तकलीद करते हैं। तो ये वो चीज़ें थीं, ये वो रोज़े थे जो वाजिब थे, हमने आपके सामने बयान किए। उसके बाद कुछ रोज़े ऐसे हैं जो हराम हैं, यानी इन दिनों में रोज़ा नहीं रखना चाहिए। सबसे पहला दिन जिसमें रोज़ा रखना हराम है वो ईद का दिन, यानी अगर कोई इंसान ईद का दिन रोज़ा रख रहा है तो ये उसके ऊपर हराम है और ये उसके अज़ाब का कारण बनेगा। दूसरा, बकरीद के दिन रोज़ा रखना हराम है। तीसरा, मासियत का रोज़ा, पाप का रोज़ा रखना हराम है। यानी क्या मतलब? यानी कोई इंसान ये नज़र करे कि अगर मसलन मैंने फ़लाँ पाप अंजाम दे दिया, फ़लाँ पाप अंजाम देने पर कामयाब हो गया तो मैं रोज़ा रखूँगा, अगर ये कोई इंसान नज़र कर रहा है तो इसका रोज़ा उसके ऊपर रखना हराम है। उसके बाद जो रोज़े हराम है वो अय्याम तशरीक़ के रोज़े रखना हराम है, उस व्यक्ति के लिए जो मीना में है। अय्याम तशरीक़ कौन से दिन है? वो है 11, 12 और 13। ज़िलहिज की 11वीं, 12वीं और 13वीं तारीख को अय्याम तशरीक़ कहा जाता है, और जो व्यक्ति मीना में उस वक्त मौजूद है उसके ऊपर इन दिनों में रोज़ा रखना हराम है। उसके बाद जो रोज़ा हराम है वो रोज़ा खामोशी का रोज़ा है, चुप्पी का रोज़ा है। यानी इंसान ये नियत कर ले कि आज के दिन किसी या मसलन किसी विशेष दिन वो किसी से बात नहीं करेगा, यानी चुप का रोज़ा रख ले। तो इस्लाम में इस रोज़े को हराम करार दिया है, ऐसी किसी रोज़े की मान्यता इस्लाम में नहीं है। उसके बाद रोज़े विसाल, रोज़े विसाल किस रोज़े को कहा जाता है? रोज़े विसाल का अर्थ ये होता है कि दो रोज़ों को एक साथ मिला देना, यानी क्या मतलब, यानी एक दिन रोज़ा रखा और इस दिन से चलते चलते दूसरे दिन फिर रोज़ा रखा और फिर जाके इफ्तार किया, यानी जब एक दिन का रोज़ा समाप्त हुआ तो उसने कोई ऐसा कार्य अंजाम नहीं दिया जिससे रोज़ा टूटता हो, यानी कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, कुछ नहीं अंजाम दिया, उसके बाद दूसरे दिन से उस रोज़े को मिला दिया, तो इसको कहा जाता है रोज़े विसाल। ये रोज़ा इंसान के ऊपर रखना हराम है। उसके बाद जो रोज़ा रखना हराम है वो ये है कि जब शाबान की आखिरी तारीख हो, मसलन अगर 29 का चाँद है तो 29 तारीख, या 30 का चाँद है तो 30 तारीख, तो अगर शाबान की आखिरी तारीख को रमज़ान के रोज़े की नियत से रोज़ा रखा जाए तो ये हराम है, इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए और नहीं कर सकता है। उसके बाद जो रोज़े हराम है वो है किसी बेटे का मुस्तहब रोज़ा रखना, लेकिन इस स्थिति के साथ कि उसका रोज़ा रखने के कारण उसके माँ, उसके बाप या उसके दादा को परेशानी, तकलीफ़ और उनको कष्ट होता हो। अगर इन लोगों को कष्ट हो रहा है तो बेटे का मुस्तहब रोज़ा रखना हराम है। उसके बाद इसी उसमें और भी हो सकता है कि बेटे का मुस्तहब रोज़ा रखना उस सूरत में जब माँ बाप और दादा को कष्ट होता हो और उन्होंने उससे रोज़ा रखने से मना किया हो, यानी अगर रोज़ा रखने से बाप दादा या माँ ने मना किया था तो बेटा मुस्तहब रोज़ा नहीं रख सकता है, ये उसके ऊपर रोज़ा रखना हराम होगा। उसके बाद जो रोज़ा हराम है वो है एक पत्नी का मुस्तहब रोज़ा रखना अपने पति की इजाज़त के बिना, अपने पति की अनुमति के बिना, यानी पति ने उसको मना किया हो कि रोज़ा नहीं रखना है तुम्हें और वो पत्नी रोज़ा रख ले। अगर पत्नी पति ने पत्नी को मुस्तहब रोज़ा रखने से मना किया है तो पत्नी के ऊपर उस विशेष दिन या उस दिन मुस्तहब रोज़ा रखना हराम है, वो नहीं रख सकती है। और इसी प्रकार पत्नी का मुस्तहब रोज़ा रखना उस समय जब वो पति के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, अगर पति के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो पत्नी मुस्तहब रोज़ा नहीं रख सकती है, उसके ऊपर रोज़ा रखना हराम है। ये वो चीज़ें हुई, ये वो रोज़े हुए जो हराम हो गए। तो हमने आपके सामने दो प्रकार के रोज़े फिर बयान किए, पहले वो रोज़े जो वाजिब थे, दूसरे वो रोज़े जो हराम थे। अब उसके बाद जो रोज़े आते हैं मुस्तहब, मुस्तहब रोज़े कौन से हैं? इस साल के जितने भी आम दिन हैं, हर वो दिन जिसमें रोज़ा रखना वाजिब ना हो, हराम ना हो और मकरूह ना हो, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त जितने भी साल के दिन हैं उन दिनों में रोज़ा रखना मुस्तहब है और इंसान रोज़ा रख सकता है। तो एक पूर्ण रूप से हुआ कि साल के किसी दिन भी आप रोज़ा रखिए उन विशेष दिनों को छोड़ के। अब अगर हम इनको अलग अलग रूप से देखना चाहें, किन हफ़्तों में कौन से रोज़े मुस्तहब हैं, किन महीनों में कौन से रोज़े मुस्तहब हैं, किन साल के कौन से दिन ऐसे हैं जिनमें रोज़ा रखना मुस्तहब है, उनको हम संक्षिप्त रूप से आपके सामने अभी तो एक दो बातें बयान करेंगे और उसके बाद अब हम आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहली चीज़, हफ्ते में वो कौन से दिन ऐसे दिन हैं जिनमें रोज़ा रखना मुस्तहब है? तो गुरुवार और शुक्रवार, यानी जुमेरात और जुमे के दिन रोज़ा रखना हफ्ते में मुस्तहब है और इंसान को रोज़ा रखना चाहिए। उसके बाद चांद के महीने के अनुसार वो कौन से ऐसे दिन हैं जिसमें रोज़ा रखना मुस्तहब है? तो जब चांद के महीने का दूसरी दहाई शुरू हो चुकी हो, यानी दूसरा दहा चल रहा हो, यानी 10 दिन की तारीख बीत चुकी है, उसके बाद अगले 10 दिन चल रहे हैं, तो अगले 10वें दिन में जो पहला बुधवार यानी चहारशंबा जो होता है उसमें रोज़ा रखना मुस्तहब है। उसके बाद हर चांद के महीने की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख को रोज़ा रखना मुस्तहब है। इसी प्रकार हर महीने के पहले पंचशंबे यानी पहले गुरुवार और आखिरी पंचमी यानी आखिरी गुरुवार को रोज़ा रखना मुस्तहब है। तो ये वो दिन थे जो चांद के महीने के आधार पर हैं। अब अगर हम इनको साल में बांटना चाहें कि साल के वो कौन से ऐसे दिन हैं जिनमें रोज़ा रखना मुस्तहब है, तो सबसे पहली चीज़, पहली मुहर्रम और तीसरी मुहर्रम के दिन रोज़ा रखना मुस्तहब है। उसके बाद पैगंबर के जन्म दिवस के अवसर पर रोज़ा रखना मुस्तहब है, यानी 17 रबीउल, 17 रबीउल के दिन रोज़ा रखना मुस्तहब है और रोज़ा रखने की बहुत फजीलत बयान की गई है। उसके बाद रजब और शाबान का पूरा महीना ऐसा महीना है जिनके अंदर रोज़ा रखना मुस्तहब है और इनकी बहुत फजीलत बयान की गई है, हत्ता कि शाबान के महीने के बारे में हदीस है कि अगर कोई व्यक्ति शाबान के महीने में 3 दिन रोज़ा रख लेता है, यानी कम से कम 3 दिन रोज़ा रखता है, तो उसके ऊपर जन्नत वाजिब है। उसके बाद उस दिन रोज़ा रखना मुस्तहब है जब पैगंबर की पैगंबरी की घोषणा की गई। यानी क्या मतलब, यही 27 रजब, यानी जिसको हम रोज़े मबास या ईद मबास भी कहते हैं, इस दिन भी रोज़ा रखना मुस्तहब है। उसके बाद 25 ज़िकादा, यानी रोज़े दहवुलअर्ज़। दहवुलअर्ज़ किसको कहते हैं, अगर दहवुलअर्ज़ को हम हिंदी भाषा में बयान करना चाहें तो जिस दिन ज़मीन का फर्श बिछाया गया उस दिन को दहवुलअर्ज़ कहा जाता है। ये 25 ज़िकादा की तारीख़ है। 25 ज़िकादा की तारीख़ बहुत महत्वपूर्ण तारीख़ है और इसके रोज़े के बारे में बहुत सवाब बयान किया गया है। इसके लिए अगर विस्तृत किताबों को देखा जाए तो बहुत बेहतर होगा। इस दिन भी रोज़ा रखना मुस्तहब है। उसके बाद पहली ज़िलहिज्जा से 9वीं ज़िलहिज्जा तक रोज़ा रखना मुस्तहब है। उसके बाद अरफा के दिन रोज़ा रखना मुस्तहब है, लेकिन शर्त यह है कि उस रोज़े के कारण दुआ में कमज़ोरी ना पाई जाए। उसके बाद मुबाहला यानी 24 ज़िलहिज के दिन भी रोज़ा रखना मुस्तहब है। ये वो चीज़ें हुई जिस दिन रोज़ा रखना मुस्तहब है। अब जिस दिन रोज़ा मकरूह है उनको भी जल्दी से आपके सामने बयान कर दूँ ताकि ये अध्याय यहाँ पर हम बंद कर सकें और यहाँ पर पूरी बात हो सके हमारी। कुछ दिन ऐसे हैं जिन दिनों में रोज़ा रखना मकरूह है। जैसे पहला रोज़ा कब मकरूह है कि अगर कोई मेहमान किसी के यहाँ मेहमान जाता है तो मेज़बान की इजाज़त के बिना मुस्तहब रोज़ा रखे, ये मकरूह है। या मेहमान मेज़बान ने मना किया हो रोज़ा रखने से लेकिन मेहमान मुस्तहब रोज़ा रख ले तो ये मकरूह है। बेटे का अपने माँ बाप और दादा की अनुमति के बिना रोज़ा रखना मकरूह है। आशूरा यानी 10 मुहर्रम के दिन रोज़ा रखना मकरूह है, नहीं रखना चाहिए रोज़ा। और अरफा के दिन रोज़ा रखना अगर वो रोज़ा दुआ में कमज़ोरी का कारण बनता हो तो रोज़ा रखना मकरूह है। और उस दिन रोज़ा रखना जिस दिन के बारे में नहीं पता है कि ये रोज़े अरफा है या ईद कुर्बान का दिन है, इस दिन भी रोज़ा रखना मकरूह है। तो ये वो चीज़ें जो हमने आपके सामने एक संक्षिप्त रूप से आपको बयान किया कि रोज़े 4 प्रकार के होते हैं, या वाजिब हैं या मुस्तहब हैं या हराम हैं या मकरूह हैं, इनको हमने आपके सामने बयान किया। इसके बाद जो हमारी बहस होगी वो विस्तृत रूप से इन्हीं के बारे में बातचीत करेंगे इंशाल्लाह अपने अगले किसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए मैं आप सभी को अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।